ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब इस शांतिवन परिसर में आध्यात्मिक जागृति पूर्णतः जीवन में लाने के लिए वैल्यू बेस्ड जीवन कैसे बनाना है उस कला को अवगत करने के लिए पहुंचे हैं। हम सब इस बात से सहमत हैं कि जिंदगी में परमात्म निष्ठा बहुत आवश्यक है। संसार में एक भी ऐसी हस्ती नहीं कि जो भगवान को न याद करता हो। कई बार हम देखते हैं कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी कह देता है, मैं तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता हूं, भगवान को मानना ये कल्पना है, ये तो अंधश्रद्धा की बहन बातें हैं, या कह देते हैं कि हमारे लिए कर्म ही पूजा है। भिन्न भिन्न प्रकार के अपनी अपनी सोच भगवान के लिए सभी ने बनाए रखी है। वास्तविकता को हम नहीं जानते, इसीलिए कई बार तुम ये भी कह देते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सच में जिधर देखता है उधर तू ही तू है। तो इस प्रकार की मान्यताओं के साथ हम चल रहे हैं। अपना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जो है वो भक्ति भावना से जीवन में ला करके चलते हैं। परंतु फिर भी गीत में सुना कि भगवान तू कहाँ है, तू कहाँ रहता है, कहाँ छुपे भगवान, आपका पता नहीं लगता। पता तो हम सभी को है, परंतु बात यह है कि यथार्थता नहीं है, बुद्धि में वो स्पष्टता नहीं है। इसीलिए कहाँ कहाँ फिर हम सोच लेते हैं कि ठीक है, जहां देखो वहां तू ही तू है। इसीलिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ा अपना दिव्य परिचय देने के लिए, जिसमें भगवान ने यही कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अद्भुत ज्ञानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूं। तो अब हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय धर्म के अधर्म की वेला चल रही है, और स्वयं परमात्मा ने अपने गीता के वचन अनुसार अपना कार्य आरंभ किया है 1937 से पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रविष्ट होकर के ये सत्य परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि भगवान कौन हो सकता है, कसौटी क्या है। आज तो ये कहावत बनी हुई है, जितनी मुंह उतनी बातें, जितने पत्थर उतने भगवान बन जाते हैं। कभी हम सोचते नहीं है कि अरे भगवान क्या चीज है। भगवान इतनी साधारण भी चीज नहीं कि मन में भाव न हो और हमें भगवान कहीं भी मिल जाए। इतने भी साधारण नहीं है कि वो हम सबके भीतर हो। इसीलिए बात तो ये हो जाती है कि जब मैं पढ़ाई पढ़ती थी तो एक लेसन आता था कि कुछ जो सुरदास लोग थे उनके आगे हाथी रखा गया और उनसे पूछा गया कि हाथी क्या चीज है। तो जिसके हाथ में कान आए उसने कह दिया, हाथी तो सूप जैसा है, छानने वाला सूप होता है ना। जिसके हाथ में पैर आ गया उसने कहा, हाथी जो है ना वो तो स्तंभ जैसा है। और जिसके हाथ में पेट आया उसने कह दिया, हाथी तो धान्य रखने का जो कोठार होता है उसके जैसा है। अब कुल मिलाकर हाथी तो अलग ही चीज है। तो इसी प्रकार जैसी भावना वैसी अनुभूति हम करते आए और उस अनुसार हमने समझ लिया कि शायद ये भगवान का रूप है। पर सत्यता क्या है? एक तरफ हम कहते हैं गॉड इज वन, हम सबका पिता परमात्मा एक है। हम ये भी कहते हैं हम सबका मालिक एक है, पर वो एक कौन उससे हम नहीं जानते। मानती तो सारी दुनिया ही भगवान को है, लेकिन भगवान को जानना, तीसरे नेत्र से पहचानना और फिर भगवान का बनना और उन्हें अपना बनाना, वो बात और ही होती है। इसीलिए भगवान कौन है, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, गॉड, ये सब उसी के नाम है। पर वो कौन है? तो भगवान की पहली परख करने की कसौटी है कि भगवान वो हस्ती है जो जन्म मरण, पाप पुण्य, कर्म फल, सुख दुख, इन सब से वो न्यारे है। दूसरी कसौटी, भगवान वो शक्ति है जो सर्वमान्य हो। तीसरी कसौटी, जो निराकारी, निर्विकारी और नीर अहंकारी हो। चौथी बात, भगवान वो शक्ति है, देने वाला दाता है, वो लेता कुछ नहीं है, सब कुछ देता ही देता है। और पांचवी बात, भगवान दुख हरता सुख करता है। भगवान कभी भी किसी को कहां भी कैसे भी दुख दे ही नहीं सकते, वो दुख हरता सुख करता और सर्व सृष्टि के, प्रकृति के पांच तत्व सहित जलचर, भूचर, नभचर, सर्व प्राणी मात्रा के कृपालु, दयालु और कल्याणकारी है। उन्हें ही भगवान कहा जाता। इसीलिए जब हम कहते हैं कि आप भी भगवान, मैं भी भगवान, बहुत अच्छी मान्यता है, लेकिन ये कसौटी अपने से लगाइए, क्या सच में हम सब में भगवान हैं या कण कण में भगवान है? मान्यता तो बहुत सही है। हमारी ऋषि मुनियों ने ये बात इसीलिए कही थी, वे त्रिकाल दर्शी थे, उन्हें पता था आने वाला कलयुग घोर नर्क बनने वाला है। इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था हरेक के अंदर आप भगवान का रूप देखें, ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से बच जाए, दुख देने से बच जाए। क्योंकि भगवान जब भगवान से मिले, भगवान जब भगवान को देखे, तो कितनी ऊंची निगाह होनी चाहिए, कितना ऊंचा दृष्टिकोण होना चाहिए। इसीलिए हमें ये बताया गया कि हर एक में भगवान का रूप देखो। वास्तव में देखा जाए, हम हर एक मनुष्यात्मा परम पिता परमात्मा की दिव्य संतान है। हम सबके पिता परम पिता परमात्मा एक ही है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। इसीलिए सभी धर्म स्थापकों ने उस एक निराकार परमात्मा की ओर ही इशारा किया हुआ है। आप देखेंगे, हम सब हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में निराकार शिव का ही पूजन और गायन करते हैं। इसी के साथ साथ गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, एक ओंकार निराकार सत नाम अकाल। परमात्मा निराकार है, वो अकाल है, जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। यीशु क्रिस्त ने भी यही कहा है, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। महावीर जी ने भी यही कहा, शिव सुख को पाना है तो अहिंसा को पालन करना होगा। शिरडी के साईं बाबा भी यही कहते हैं, सबका मालिक एक है। सभी धर्म स्थापकों ने एक निराकार की ओर ही इशारा किया है। परंतु बात क्या हुई, इशारे को हम समझ न पाए, और हम सबने मीडिएटर जो है उन्होंने भगवान समझ लिया। इस एक छोटी सी भूल के कारण हम किसी भी देहधारी पवित्र आत्माओं को, धर्म आत्माओं को, देव आत्माओं को हम भगवान मानने लग गए। वास्तव में देखा जाए तो जो भी संत है, महात्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, वे सब स्वयं को मैसेंजर कहलाते हैं। हम भगवान के संदेश वाहक है, हम भगवान नहीं है। भगवान शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है, भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, व अर्थात वायु, स्लो अग्नि, और न अर्थात नीर अर्थात जल, जो प्रकृति के पांचों ही तत्वों को अपने ऑर्डर में रखते हैं, वो भगवान है। इसीलिए हम सब भगवान को बड़े प्यार से याद करते हैं। जब भी दुख आएगा तो कहते, ऊपर वाला बैठा है ना, वो ही हम सब की चिंता करता है। लेकिन फिर हम मीडिएटर को भगवान मानते हैं। इसीलिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती, आंसर आपको देना होगा। एक बहुत अच्छा नगर था और राजा बहुत दानी थे, धर्मात्मा थे, रोजाना भगवान की पूजा करते थे और भगवान के आगे कभी फल तो कभी अनाज, ऐसी चीजें भगवान को चढ़ाते थे। और उनका समय भी मुकरर था और भिक्षा के लिए जो व्यक्ति आता था वो फकीर जो है वो भी मुकरर ही था। सालों से नियम प्रमाण राजा की पूजा हो जाती और राजद्वार पर महल के वो जो फकीर है वो आकर के भिक्षा मांगते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि सालों के बाद राजा को पूजा करने के लिए देरी हो गई और जो फकीर था वो भिक्षा लेने के लिए राजद्वार पर पहुंच गया। जब वहां पर वो आया और भिक्षा मांगी तो द्वारपाल ने कहा कि राजा जो है वो अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा और भगवान की पूजा करते हैं। तो उसने कहा, क्या मैं देख सकता हूं राजा भगवान की पूजा कैसे करते हैं? तो द्वारपाल ने कहा, ये राजा का जो मंदिर है वो राजमहल के ऊपर है, आप कुछ कदम महल से पीछे चले जाओ और ऊपर जाके देखो कि राजा किस प्रकार भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब फकीर जाकर के देखता है तो राजा के दोनों हाथ ऊपर होते हैं और ऐसे दोनों हाथ ऊपर करते हुए राजा कह रहे थे, हे प्रभु, आप मुझे इतना धन दौलत दीजिए कि मेरे राज्य में जो गरीब है उन सबको मैं सुखी कर सकूं। अब ये जो एक्शन थी और राजा का कहना था ये फकीर देख रहा था, और ये दृश्य देखते हुए उस फकीर के मन में क्या भाव जागृत हुआ होगा बताइए। हाँ बोलिए, तो वो सोच रहा था कि राजा में और मुझ में क्या फर्क है, राजा भगवान से मांग रहे और मैं राजा से मांग रहा हूं और सालों से मांग रहा हूं, परंतु मैं तो जैसे के वैसा ही हूं, तो क्यों न मैं भी डायरेक्ट भगवान से प्राप्त कर लूं। उसने राजा से ये सबक सीख लिया और दूसरे दिन से उसे पता नहीं कि वो क्या पूजा पाठ करते हैं और क्या कर रहे थे। वो दूसरे दिन बड़ी भावना से और प्यार से भगवान से कहते, भगवान, हम भी आपकी संतान हैं, आप मैं और मेरे जैसे जितने भी गरीब भाई बहने हैं उन सब को आप सुखी कर दो। और डायरेक्ट वो भगवान को याद करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो जो भिखारी फकीर है वो सच में बहुत सुखी बन जाता है। उसकी प्रार्थना के फलस्वरूप उसे बहुत सारी प्राप्तियां होती है। तो वो सोचने लगता है कि चले एक दिन हम जाकर के राजा से मिलते हैं, बड़ा अच्छा सा गिफ्ट तैयार करते हैं और राजा से मिलने चले जाते हैं। जब राजा से मिलते हैं तो राजा से पूछते हैं महाराजा पहचाना मैं कौन हूं? राजा ने तो कभी चेहरा देखा नहीं था। राजा ने कहा मैं नहीं जानता हूं। कहा जो आज तक आपके द्वार पर फकीर बनकर आता था वही आज भगवान का अधिकारी बन मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। और केवल मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत मेरे भाई बहने हैं, वो भी सुखी बन रहे हैं। राजा ने पूछा कैसे? कहा राजा मुझे जो काम मिलते गए मैं मेरे जैसे गरीब भाई बहनों को देता रहा और कारवा इतना बढ़ गया कि वो भी सुखी होने लगे, तो कमाल किस बात का रहा बताइए। इंसान को मांगो तो उतना ही मिलेगा, भगवान को मांगो, डायरेक्ट उनके साथ कनेक्शन जोड़ो तो सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने वो आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें उस परमात्मा के साथ बुद्धि योग जोड़ना है जो हमने कहा कि वो देने वाला दाता है। इसीलिए तो कहावत है दाता इतना देता है, इतना देता बताइए, छप्पर फाड़ के देता है, इतना वो दाता है। इसीलिए मीडिएटर कोई भी भगवान नहीं हो सकते, चाहे वे देवात्मा है, धर्मस्थापक धर्मात्मा है, चाहे हमारे गुरु लोग हैं, चाहे साधु संत महात्माएं भी है, हम सब भगवान के राह दिखाने वाले राहगीर जरूर है, परंतु देहधारी कोई भी भगवान नहीं। पवित्र आत्माएं हैं, मार्ग प्रदर्शक है, लेकिन वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान वही है जो जन्म मरण, पाप पुण्य, कर्म फल, सुख दुख इन सब से न्यारे है। इसीलिए देहधारी आत्मा परमात्मा की तरफ इशारा करती है और उससे हमें समझना है, जानना है कि वो परम सत्य है, निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव जी। शिव शब्द का अर्थ ही है कि भगवान कल्याणकारी है। कभी भी भगवान किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। दूसरी बात, भगवान का वास्तविक रूप ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसीलिए परमात्मा को पूजा करने के लिए हम सभी ने बड़े बड़े निराकार के शिवलिंग बनाए रखे हैं। चाहे हम निराकार शिव जी की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, वो चिन्ह है भगवान का, चाहे उसे हमारे मुस्लिम भाई बहने संग ए अस्वद काबा का पत्थर कहकर के उसे अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। चिन्ह कौन से की जापान में भगवान को कहा जाता, जो कि वो शांति दाता और शक्ति दाता है। भगवान सर्व गुणों के, सर्व शक्तियों के वो भंडार है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। इसीलिए उनका गायन और पूजन निराकार ज्योति बिंदु के रूप में या शिवलिंग के रूप में किया जाता है। अब परमात्मा का रहने का स्थान कहाँ है? कहाँ रहता तू, छुपा है तू? इल्जाम है भगवान तुम पर, तुम दिखाई नहीं देते हो। कहाँ रहते हो प्रभु आप? हम याद तो बहुत करते हैं, पर आपका निवास स्थान कहाँ? अब ऐसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तुम कहेंगे हमारे हृदय में रहते हैं। सही बात है, भगवान को हम सब दिल से याद करते हैं, इसीलिए वो हम सबके हृदय में रहते हैं। परंतु फिर भी तो भगवान का रहने का स्थान तो होगा ना? कहाँ रहते भगवान? ऐसे हमें याद नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कोई बात में कोई सच और झूठ करता हो, कभी झगड़ा भी हो रहा हो, आश्चर्य की बात है, उस समय जाने अनजाने हम सबके मुख से ये शब्द निकलता है, ठीक है भाई, आप मेरे से सच झूठ कर सकते हो, परंतु ऊपर वाले से कुछ छीपता नहीं है। तब तो नहीं कहा कि हृदय में रहने वाले से कुछ छीपता नहीं? तब तो नहीं कहा अयोध्या में रहने वाले से छीपता नहीं? तब हम सबकी बुद्धि ऊपर चली जाती। कोई गलत कर्म करता है, उसे रियलाइज कराया जाता, भाई तुम ये गलत काम करते हो, व्यक्ति नहीं मानता है, तब हम कहते छोड़ दे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, ऊपर वाला सब कुछ जानता है। अब वो ऊपर में कहाँ रहता है? बड़े शहर में बड़ी बिल्डिंग्स होती है। कोई पूछता है आप कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे हम तो ज्ञान सूर्य सोसाइटी में रहते। अच्छा, कौन सी बिल्डिंग में? वहां तो ABCD होते हैं। अच्छा, ABCD में भी कौन से फ्लोर में? पूरा एड्रेस दीजिए, हम आपके शहर में आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे। व्यक्ति से मिलने के लिए भी, व्यक्ति की चेहरे की पहचान होने के बावजूद भी, उस व्यक्ति का पूरा परिचय हमारे पास हो तभी हम उनसे मिल सकते, वरना कहीं बार तो वहीं पे चक्कर लगाते रहते। इसी प्रकार भगवान के लिए भी यही हुआ। हमने बहुत मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, तीर्थ यात्रा, जप तप, दान पुण्य हम बहुत करते आए, फिर भी दिल से यही निकला, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी प्रभु हरदम दूर रहे तेरे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा का रहने का स्थान, बड़े प्यार से हम जब भगवान जी की आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उस आरती में हम स्वयं कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, पार ब्रह्म सूर्य चंद्र तारों से भी पार, लाल ही लाल प्रकाश में ब्रह्म महतत्व है, जिसे शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, ब्रह्म लोक कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है। परमात्मा उस ब्रह्म लोक के निवासी है। इसीलिए हम भगवान को ऊपर में याद करते हैं। हमें और इस संसार में ढूंढने की जरूरत नहीं, यहां तो भगवान के यादगार बने हुए हैं। तीर्थ स्थान जो है वो यादगार है, लेकिन भगवान तो ब्रह्मलोक के निवासी है। फिर भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, संबंध बताइए क्या है। कोई तो संबंध जरूर होगा, तब तो हम उनको इतना याद करते हैं। अति दुख होने पर भी भगवान को ही याद किया जाता है, तो क्या संबंध है भगवान से, केवल भक्त और भगवान का या अन्य भी कोई संबंध है। है कोई संबंध? थोड़ा सा अपने आप को पूछिए कि हमारा क्या रिलेशन है परमात्मा से। भगवान से संबंध है, जो हम बहुत प्यार से गायन करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, बोलिए त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। है ये रिलेशन? ये आज ही हम सुन रहे हैं, बहुत प्यार से हम भगवान की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं कि परमात्मा आप हमारे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, सतगुरु है, सर्व संबंध आपसे है। लेकिन क्या उन सर्व संबंधों का कभी हमने अनुभव किया है? कभी उस प्यार से परमात्मा पिता को याद किया? गायन तो बहुत प्यार से करते हैं। एक पिता और पुत्र, मात पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है? जैसे लौकिक रीति, अगर बच्चा रोज रात को 8 बजे घर में आता है और बच्चे ने फोन भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं आया और बच्चा 8 बजे घर में नहीं आया, 8:30 तक तो हम बड़े प्यार से ठीक है आ जाएगा, लेकिन जैसे 9:15 बजता हमारी दिल की धड़कनें तेज होने लगती, बच्चा आया नहीं, बच्चा आया नहीं, बच्चा आया नहीं। माता पिता दोनों भी किस तरह से अपने बच्चे को याद करते हैं, आप अपने से पूछिए। और बच्चा भी अगर कहीं दूर चला जाता है, चाहे पढ़ने के लिए अमेरिका ही जाता है, जॉब करने के लिए अमेरिका ही जाता है, तब देखिए दिन में तो 4-5 फोन कॉल्स होते हैं, बहुत मम्मा याद आ रही है, बहुत पापा आपकी याद आ रही है। वो एक दिल की तड़प, वो एक दिल की आवाज, उस समय जो मन की खींच होती है वो कैसे होती है, हम सब अच्छी रीति जानते हैं। तो क्या उस तड़प से, क्या उस लगन से, क्या उस दिल की आवाज से कभी प्रभु को याद किया? त्वमेव माताश्च पिता तो कहा, परंतु वो संबंध कभी जोड़ा, वो दिल का प्यार कभी महसूस हुआ? कि केवल हमने वर्णन तक ही गायन किया, शब्दों तक ही हमने कहा, त्वमेव माता श्रपिता त्वमेव, कह भी देते तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। वो सुख घनेरे देने वाला है, कणा देते तो घना देने वाला है, परंतु वो प्यार, वो दुलार क्या कभी महसूस किया? हमने कभी दिल की गहराई के साथ उस प्यार से अनुभव नहीं किया? भगवान तो भोलेनाथ है, हम थोड़ी भी भक्ति कर लेते ना तो बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आप किसी को भी भगवान मान रहे, किसी को भी मान रहे हो, भावना का फल देने वाले तो निराकार परम पिता परमात्मा ही है। मूर्ति भावना का फल नहीं देती, इंसान भावना का फल नहीं देता, भगवान की जो भावना उस मूर्ति में रखी, भगवान की जो भावना उस देहधारी के प्रति रखी, वो हमें फल देता है। लेकिन आदत पड़ गई है, जो आंखों से दिखाई देता वही भगवान मान लिया। गायन तो है भगवान का, आंख न जाने दिल पहचाने, सूरत क्या है ऐसी, उसे दिल से जाना जाता है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, दिव्य बुद्धि से उस परमात्मा पिता को हमें पहचानना है, उनसे संबंध जोड़ना है और उस संबंधों का अनुभव भी करना है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भगवान को, ईश्वर को, गॉड को हम बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं, भोलेनाथ बाबा है वो, हम सबके परम पिता है। इसीलिए आप भी अपने दिव्य बुद्धि से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से उनको पहचानिए और संबंध जोड़िए और उन सर्व संबंधों का सुख, जिसे अति इंद्रिय सुख कहा जाता है, वो जीवन में अनुभव कीजिए। ऋषि मुनियों ने तो हिमालय की चोटी पर जाकर, गुफाओं में बैठकर भगवान को पाने के लिए तपस्या की है, परंतु भगवान ने ये कहा कि मैं धर्म ग्लानी के समय पर आता हूं और आकर के पवित्र शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की मैं स्थापना करता हूं। तो भगवान का आने का समय कौन सा है जानते हैं? पहले कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, तो अब जो समय चल रहा है वो अधर्म का समय चल रहा है, और इस समय पर परम पिता परमात्मा शिव जी का दिव्य अवतरण हो चुका है, दिव्य कार्य भी संपन्न होने जा रहा है। परमात्मा आए ही इस भूतल पर, इसीलिए हम बड़े दुखी हो चुके हैं। हमारी दिल की पुकार सुनकर परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और वो सुहावना समय, कलयुग के अंत का समय और सतयुग के आरंभ का समय, जिसको कहा गया पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुष अर्थात आत्मा, कल हम सबको सेल्फ रियलाइजेशन कराया गया कि हम देह नहीं, हम आत्मा हैं और परमात्मा हम आत्माओं के परम पिता है, और वो इस संगम युग पर हम पतित मनुष्यों को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य करते हैं। इसीलिए तो हम उनको पुकारते हैं, पतित पावन आओ, समय है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लेकिन सबसे टफ टाइम सृष्टि चक्र का ये कलयुग के अंत का समय चल रहा है, और भगवान हमारे पिता है। आप सब जानते हैं, अगर व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख की फीलिंग होती तो अपने संतान का दुख कोई देख नहीं सकता, तो परमात्मा भी हम सबके परम पिता है, वो भी हमारा दुख देख न सके। इसीलिए ब्रह्मलोक छोड़ करके परमात्मा हम सबके दुख हरने, सबको सुख देने के लिए हम सर्व आत्माओं को दुख से छुड़ाए, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए इस साकार दुनिया में, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होकर अपना दिव्य कर्तव्य करा रहे। वो कर्तव्य ही है दुख धाम को सुख धाम बनाना, इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाना। यही भारत स्वर्ग था, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, भाईचारा था, सद्भावना थी, आपस में सब 100% दिव्य गुण एक एक मनुष्य आत्मा में थे। वह मनुष्य देवात्मा कहलाए जाते थे। वो देवता बनाना परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है। हम सब ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य, परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने उस स्वरूप को भूले हुए हैं। परमात्मा पुनः आकर हम सभी को उस स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, आप ही सतो प्रधान थे, देवात्मा के रूप में आप इस धरती पर विराजमान थे। इसीलिए कहा कि भगवान का कर्तव्य है इस भारत भूमि को पुनः स्वर्ग बनाना। स्वर्ग और कुछ नहीं, स्वर्ग जैसे सुख तो भाइयों और बहनों आज कलयुग में भी है, लेकिन कमी किस बात की है? जो आज हम कहते हैं हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए करते हम। क्या शांति, खुशी, आनंद, प्रेम की कोई गोलियां है, मेडिकल ट्रीटमेंट है कि चलो हम वहां जाएं और डॉक्टर से लिख ले, ये सब चीज कहां है और किसके पास है? ये कुछ भी बाहर नहीं है, ये सब हमारे भीतर में है। लेकिन भीतर में होते हुए भी आज हमारे भीतर वो दिव्य संस्कार दब चुके और विषय विकारों ने स्थान ले लिया, और वो विषय विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, वैर, नफरत, घृणा, बदले की भावना, लेग पुलिंग और पता नहीं क्या क्या, मुड ऑफ। हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते, खुशी चली जाती, बात तो छोटी सी होगी, पता नहीं मेरा तो मूड ही खराब हो गया। क्या चीज होती है मूड? सद्गुणों की जगह इन मनोविकार हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, बुद्धि का संबंध जोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक वो पावर हम सब में आती है और इन मनोविकारों के ऊपर हम विजय प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिए तो भगवान को कहा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान शिव पाप कटेश्वर भी है, विषय विकारों को मिटाने की वो शक्ति देने वाले, वो सर्वशक्तिमान है। किन शब्दों में उस परमात्मा पिता की हम महिमा करें, वो शब्द हम वर्णन नहीं कर सकते। कहते हैं भगवान ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, सुखों के सागर है, पवित्रता के सागर है। वो सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों के वह भंडार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनके वे रचियता है, इसीलिए उनको अंग्रेजी में गॉड कहा गया है। गॉड शब्द का अर्थ होता जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रक्टर। जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कर्तव्य करते हैं, जो शंकर जी के द्वारा सृष्टि के महाविनाश का कर्तव्य करते हैं, और जो विष्णु जी के द्वारा पालना का कर्तव्य करते हैं, वही तो वो गॉड है। उन्हें त्रिमूर्ति शिव कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी वे रचियता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अटेंशन प्लीज, आंखें खोले, शिव और शंकर एक नहीं है। ये नया कंसेप्ट ब्रह्मा कुमारी से ले सकते, आज तक हमने महिमा की है सत्यम शिवम सुंदरम, पर हमने भूल से भी नहीं कहा सत्यम शंकरम सुंदरम। कहा कभी किसी ने? कभी भी नहीं कहा। हम परम पिता परमात्मा के अवतरण का दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, शंकर रात्रि कभी नहीं मनाई जाती, महाशिवरात्रि कही जाती। क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर उस समय आते हैं जब अज्ञान का अंधकार पूर्णतः छाया हुआ होता है, और वो अज्ञान अंधकार है जो हम स्वयं को भूल गए, स्वलक्ष्य भूल गए, स्वकर्म भूल गए, स्वपिता को भूल गए, स्वधर्म को भूल गए, स्वघर को भूल गए, स्वपिता को भी भूल गए। मैं आत्मा हूं, ये आज कहां स्मृति है? मेरा स्वलक्ष्य शांत रहकर विश्व में शांति फैलाना, स्वधर्म भी यही है। स्वकर्म, कर्मयोगी जीवन, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ धर्म। स्वपिता, परम पिता परमात्मा। स्वदेश, हम सबका असली घर वो ब्रह्मलोक ही है। तब तो हम भी कहते हैं, फ्रस्ट्रेट होने के बाद न चाहते भी कहते, ऊपर वाला बुला ले तो बहुत अच्छा है। अरे एक बार ऊपर चले जाए ना इंसान, सब झंझटों से मुक्त हो जाता। हम सबको याद आता है वो घर जो ब्रह्मलोक है, वो हमारे परम पिता परमात्मा का स्थान, सो हमारा घर है। तो इस अज्ञानता से हमें भगवान मुक्त करते हैं, विषय विकारों के अंधकार से वो हमें मुक्त करते हैं। इसीलिए उन्हीं का पावन पर्व अवतरण दिवस हम शिवरात्रि मनाते हैं, महाशिवरात्रि, शंकर रात्रि नहीं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहा जाता, परंतु जब शिव परमात्मा की महिमा करते तब कहा जाता शिव परमात्माय नमः। और एक कहानी प्रसिद्ध है, पार्वती जी को शंकर पति चाहिए थे, तो पार्वती जी ने निराकार शिव की बहुत तपस्या की, तब उन्हें शंकर पति मिले। इसीलिए शिव परमात्मा है और शंकर ये देवता है, इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तीन देवताओं के द्वारा वो अपना कर्तव्य कराते हैं, वो सर्व मनुष्यात्माओं के मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। तभी तो हम अंत समय भी उस भगवान को ही याद करते, और जिस किसी का अंत आता है तो उसे भी भगवान की याद दिलाई जाती है। तब कहते हैं अंत मते सो गति, अर्थात गति सद्गति दाता वो भगवान। कहते हैं ना, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, वो सब ठीक कर देगा। बीमार व्यक्ति को भी कहा जाता आराम कीजिए, आराम कीजिए, अर्थात आप राम को याद कीजिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है, सर्व सुखों के वो दाता है। इसीलिए कभी किसी का अंत हो तो ये नहीं कहा जाता है कि भाई बैंक ऑफ इंडिया में इतना सारा धन रखा है, थोड़ा बैंक मैनेजर को याद कर लो या बैंक को याद कर लो, या धनवान किसी व्यक्ति को याद कर लो, नहीं। जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ धन है तो वो राम रतन धन है। राम रतन धन पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। जो साथ चलने वाला है वो धन परम पिता परमात्मा की याद ही तो है। तो क्या हम भगवान को इतना प्यार से याद करते? क्या वो धन मेरे पास जमा है? पता है इस दुनिया का कुछ भी साथ नहीं चलेगा। साथ चलना है तो यही धन चलना है। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे तन मन के। पता है ये, और सब काम हम सब कर लेते हैं लेकिन एक ही काम के लिए फुर्सत नहीं होती है, और वो कौन सा काम है? परमात्मा की याद। दर्शन करना बड़ी बात नहीं। पता है हम कहीं बार टू व्हीलर पे होते हैं, फोर व्हीलर में होते हैं, मंदिर के सामने से गाड़ी चली जाती, सिर झुक जाता है, लेकिन भगवान को दिल से याद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। फुर्सत कहाँ मिलती बहन जी? इतने सारे काम हैं, पर राम को याद करने के लिए जो सद्गति देने वाला है, भविष्य उज्जवल बनाने वाला है, उसके लिए मेरे पास याद करने की फुर्सत है। गायन तो बड़ा भारी सुनते हैं, कि भगवान को याद करने से ही अंतमति सुगति होती है। अब जिसने सारा जिंदगी भर पैसा 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 ही किया तो अंत में परमात्मा याद आएगा? हर चीज के अभ्यास की जरूरत है। तो भगवान की याद करने का भी इस जिहा को अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो अंत में मुख से निकलेगा, कोई कहेगा भाई साहब बहन जी कहो राम, अंतमति हो जाएगी, परंतु हमने अभ्यास ही नहीं किया, मुख में दांत भी नहीं। राम कहने जाते हैं, अक्षर निकलता लाम लाम लाम। सारी जिंदगी भगवान आपसे दूर रह गए, दूर रह गए। अरे इंसान को भी बहुत दिन याद नहीं करो तो कहते बहन जी कितने दिन आपने हमें याद नहीं किया। हम भी कह देते हंसते हुए बहन जी आपने भी तो याद नहीं किया। तो जब इंसान भी इंसान की याद कर लेता तो मिलन हो जाता है। कहते ना आज ही आपको याद किया था और आप मिल गए। तो जब इंसान को दिल से याद करते वो व्यक्ति मिल जाता, उसका फोन आ जाता, तो क्या उस प्यार से हम परमात्मा पिता को याद करते? और वो दिव्य बुद्धि से याद की जरूरत है। इसीलिए आज आपको परमात्मा पिता का सत्य परिचय कराया गया। अब उस दिव्य बुद्धि से आप पहचानिए। सबसे पहली बात ये कही कि कौन भगवान हो सकता, उसकी परख क्या? देखिए वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। भगवान तो सब कुछ करते हुए कहते मैं कुछ नहीं करता, हम तो थोड़ी बात में कहते मैंने ये किया मैंने ये किया। आ जाता है ना थोड़ा, मेरे पास ये है मेरे पास वो है, भगवान निरहंकारी है। जन्म मरण के चक्र से वो न्यारे है, कर्म फल सुख दुख से वो न्यारे है। इसी प्रकार परमात्मा का यथार्थ नाम शिव है, उनका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका रहने का स्थान ब्रह्मलोक है। उनके साथ हम सबका संबंध आत्मा के वो परम पिता, मात पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु है। फिर परमात्मा के आने का समय पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध समय और कर्तव्य, कर्तव्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना, गति सदगति देना, नरक को स्वर्ग बनाना, एक धर्म एक राज्य एक भाषा स्थापन करना। और भगवान हम सबके कल्याणकारी है और वो इस समय आकर हम सबको कह रहे हैं, बनो महान करो कल्याण, बनो महान करो कल्याण। ओम शांति, ओम शांति।